தியானம் திமிராந்த சிகியானம் ஜனாசலாக்கிய சர்ச் உண்மையில் தமியேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. நமஹ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யத்ய தேச தாரிணே. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதி கோபேஷ் கோபிகா காந்த ஸ்ரீ ராதா காந்த நமோ அஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி பிரஷபானுஷ்யுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருபியசிச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரிஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யத்ய தேச தாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்குலங்கய தேகிரே யத் கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ குரு தீன் காரணம் ஸ்ரீ சைதன்யேஸ்வரம். சர்வப்பிரதம் உபஸ்தித் ஜித்தனே பி பக்த சபி கா ஹிருதய சே பகவான் கி ஸ்ரீ சரணங்களோ மே பிரார்த்தனா கரதே ஹே. ஆப் சபி கே ஊப்பர் பகவான் கி அசீம் கிருபா ஹே, ஔர் விசேஷகர் ஆப் சபி கா மன் பகவான் கி ஸ்ரீ சரணங்களோ மே லகா ரஹே கி தாகூர் ஜி கி சரணங்களோ மே பிரார்த்தனா கரதே ஹே. பஹுத் சுந்தர் ட்ராமா ஆப் லோக் கியே, பஹுத் ஹி அச்சா லகா, பஹுத் ஹி சுந்தர் ட்ராமா தா. ஔர் இஸி பிரகார் ஹம் ப்ராக்டிஸ் கர்தே ரஹேங்கே ஹே, தோ ஏக் தன் சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ஜிஸ்கோ போல்தே ஹே, பஹுத் சுந்தர் ஆப் லோக் பர்ஃபார்ம் கர் சக்தே ஹே. தோ இஸ்லியே இஸ்கா பிரயாஸ் கரோ, அபியாஸ் கர்தே ரஹோ, கரத் கரத் அபியாஸ் ஜட மதி ஹோத் சுஜான், ரஸ்ஸி ஆவத் ஜாத் ஹே சில்பர் படே நிசான். தோ இஸ்லியே பகவான் போல்தே ஹே, அபியாஸ் யோக கௌந்தேன வைராக்யன ச கிரியதே. குந்தி புத்ர அபியாஸ் கரோ ஹே, அபியாஸ் கர்னே சே சப் குச் சம்பவ் ஹே, குச் பி அசம்பவ் நஹீ ஹே. तो इसलिए बहुत ही अच्छा आप लोग प्रयास किए, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा था. तो भगवान बोलते हैं, कौनते हो प्रतिजानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति. हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि जो मेरी शरणागति ग्रहण करते हैं उनका कभी विनाश नहीं हो सकता. जा चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज बोलते हैं, जा रहे मारे कृष्ण तारे राखे कोई, और तारे मारे कृष्ण जारे राखे कोई. जिसको मानने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं उसको ब्रह्मांड में कोई भी बचा नहीं सकता, और जिसको बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं ब्रह्मांड में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता. तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और युद्ध के समय कुंती ने एक बार कृष्ण को बुला करके कहा, कृष्ण मैं जानती हूं आप इस भूभार को नष्ट करने के लिए, असुरों को नष्ट करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, इसलिए मेरी आपके चरणों में एक विनती है कि मेरे पांच पुत्र हैं और मैं चाहती हूं पांच पुत्र क्या रहे, जीवित रहे. भगवान ने कहा, भुआ तुम जैसा चाहती हो मैं वरदान देता हूं, चाहे मेरे को ब्रह्मांड में कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सारी सृष्टि का क्यों ना विनाश करना पड़े, लेकिन आपके जो पांच पुत्र हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे. तो इस प्रकार जो है 11 अच्छोड़ी सेना कौरवों के पक्ष में है और 8 अच्छोड़ी सेना पांडवों के पक्ष में, 7 अच्छोड़ी सेना पांडवों के पक्ष में थी.
चार दिन तक युद्ध चला। पितामह भीष्म पांडवों के सेनापति हैं, कौरवों के सेनापति हैं, और जो है दृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति हैं। हालांकि दृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया गया है, लेकिन उसकी बागडोर भीम के हाथ में है। चार दिन तक युद्ध हुआ। पितामह भीष्म जो है 10,000 सैनिकों का प्रत्येक दिन वध कर रहे हैं पांडव पक्ष का, लेकिन फिर भी पांडव की पक्ष की जो सेना है उसका जो उत्साह है बहुत अधिक दिखाई देता है, और कौरव पक्ष के जो सैनिक हैं उनका मनोबल टूटता ही जा रहा है, क्योंकि भीम के द्वारा बड़े बड़े महारथियों को धराशायी कर दिया गया और यहां तक कि दुर्योधन के कई सारे भाइयों का वध कर दिया गया। अंत में दुर्योधन से रहा नहीं गया और चौथे दिन दुर्योधन भीष्म के शिविर में आता है और भीष्म के शिविर में आकर के पितामह भीष्म को दंडवत प्रणाम करता है और रो रो करके पितामह भीष्म के चरणों में विनती करता है, हे पितामह, मैं जानता हूं मैं दुर्भाग्यशाली हूं, पांडव लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप हमारे पक्ष के हैं, हमारे पक्ष की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका जो मानसिक जो चेतना है या आपका जो प्रेम है वो पांडवों के प्रति बहुत अधिक है, इसलिए अभी तक एक भी पांडव को आप मार नहीं सके। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन तू नहीं जानता है, ये जो देख रहे हैं ये कृष्ण और जो अर्जुन वास्तव में एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने तुमको कई बार इस बात को समझाया कि कृष्ण और अर्जुन दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। एक बार की बात थी, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आमंत्रित किया और एक सभा का आयोजन किया। उस सभा के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया गया था और उस समय भगवान श्री कृष्ण उस सभा के अंदर उपस्थित हुए तो उस समय प्रस्ताव रखा गया था प्रभु के सामने कि देखो इस समय पृथ्वी पर जो है असुरों का भूभार बहुत अधिक हो गया है, इसलिए हे प्रभु आप क्या करो, इनको नष्ट करने के लिए, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपको पुनः आना ही होगा। तो भगवान इस प्रकार आश्वासन दिए और आश्वासन देकर के अपने धाम में चले गए। फिर जो है वही भगवान वही विष्णु जो है किसके रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और जो उनका नित्य सखा जो सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है वो अर्जुन जो है उनका नित्य सखा है, इसलिए कृष्ण और अर्जुन दोनों ही जो है इस भूभार को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं। अभी भी तुम्हारे पास में समय है, तुम जो है उनकी शरणागति ले लो, उनके सरेंडर कर दो, कम से कम जितने भाई तुम्हारे बचे हैं उनके साथ राज्य का भोग करो, नहीं तो ये समझ लेना चाहिए कभी भी तुम जो है विजय की जो आकांक्षा लिए हुए हैं कभी तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली नहीं। इतनी बात को सुना लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में जो स्पर्धा थी पांडवों के प्रति वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वहां से चला गया, जाकर के युद्ध हुआ, सुबह अगली मॉर्निंग फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। पांचवा दिन गया, छठवा दिन गया, सातवा दिन गया और दुर्योधन के कई सारे भाई प्रत्येक दिन धराशायी होते रहे। अंत में आठवा दिन आया और कर्ण को जो है दुर्योधन फिर से लेकर के और पितामह भीष्म के शिविर में आया और फिर पितामह भीष्म से कहा, हे पितामह, मैं जानता हूं कि आप कभी भी पांडवों का वध नहीं करेंगे और जब तक आप पांडवों का वध नहीं करेंगे कभी विजय हो नहीं सकती हमारी, तो इसलिए आप क्या करो, ठीक है तुम्हारा प्रेम है पांडवों के प्रति, आपका भाव है पांडवों के प्रति, तो ऐसा करो आप जो सेनापति के पद से तिलांजलि देकर के और कर्ण को जो है उस सेनापति तो उनको प्रदान करो, जिससे हमारी सेना का जो नायकत्व तो है वो कर्ण हमारे संभालेंगे। तुरंत जो है पितामह भीष्म बड़े ही क्रोधित हुए, उग्र हो गए, दुर्योधन तुम नहीं जानते हो जिस करण को तुम इतना विश्वास करते हो उसको मैं हमेशा अर्धरति कह करके आया। वो एक करण कई बार जब तुमको बंदी किया था, जब पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे, तो उस समय तुम पांडवों को चिढ़ाने के लिए सेना के सहित में उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो उस समय जो है चित्ररथ गंधर्व ने क्या किया था, तुमको अरेस्ट किया था। और उस समय कर्ण था वहां, लेकिन एक कर्ण कुछ नहीं कर सका। अंत में तुम्हें जो है अर्जुन आया, अर्जुन ने तुमको जो है मुक्त किया था। फिर तुम इस बात को भूल गए हो, तुम कर्ण के ऊपर इतना वो करते हो, और मैं एक क्षत्रिय होकर के, और इससे मैं हार मान लूं कि भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम ये चाहते हो तो ठीक है। मैं ये 5 बाण निकाल करके रखता हूं, और ये 5 बाण कल जो है पांडवों का आखिरी दिन होगा। तो यही चाहते हो कि नहीं, पांडवों का वध होना चाहिए, पांडवों का वध होना चाहिए, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि कल का दिन जो है पांडव लोग नहीं देखेंगे। और इस प्रकार पिता में भीष्म ने 5 बाण निकाल करके अपने समर से अलग रख लिए, और दुर्योधन से कहा तुम अभी जाओ। तुरंत जो है दुर्योधन ने कहा, पिता में क्या आप वास्तव में ही सत्य बोल रहे हो? तुरंत जो है पिता में समझे कर, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, दुर्योधन को मेरी बात पर अविश्वास। तुरंत जो है पिता में भीष्म थोड़े रुके और सोचे, और उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और स्मरण करके कहा, प्रभु आप जो कार्य करना चाहते हो वास्तव में उसको कोई टाल नहीं सकता, आपका कुछ दूसरा ही प्लान लगता है, नहीं तो दुर्योधन के मन में और मेरे बातों पर अविश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ उसको, तो इसलिए मेरे को ये सत्य सत्य मालूम चलता है कि आपका प्लान कुछ दूसरा है। तुरंत जो है पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अब तुम चले जाओ। दुर्योधन कर्ण को लेकर के जो अपने शिविर में आ जाता है, और शिविर में आकर के चारों तरफ यह घोषणा कर दी जाती है कि कल पांडवों का अंतिम दिन होगा। और जैसे ये घोषणा हुई, क्योंकि कौरव लोगों के तो पहले से ही हवा उड़ी हुई थी पांडवों के कारण, उनकी हालत खराब थी, सारी शक्ति लगा करके भी एक भी पांडव का बाल बांका नहीं कर सके थे, तो इसलिए कौरव का जो है बहुत हतोहताश हो रहे थे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन आज जब इस प्रकार पितामह भीष्म के मुख से क्या नाम प्रतिज्ञा निकली कि पांडवों का कल अंतिम दिन होगा, कौरव पक्ष बड़े ही हर्षित हो गए, और जो है सुखी की लहर छा गई, आनंद मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे, जैसे आप लोग उमंग उत्सव मना रहे हैं, ऐसे वो लोग भी, उन्होंने उमंग उत्सव मनाया था। चारों तरफ जो है जय जयकार होने लगी, बड़े खुशी थे। और इधर जो है पांडवों के शिविर में जब बात गई, तो उनके शिविर में सन्नाटा छा गया। भाई पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, उनकी प्रतिज्ञा कभी भी झूठ नहीं हो सकती। और ये संवाद जो है पांडवों के जब है राजभवन में गया, जहां उनकी स्त्रियां थीं, जब उन्होंने समझा तो उनके तो होश ही उड़ गए, मुंह पीले पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो पांडव लोगों को जब ये समाचार मिला, तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों को लेकर के अपने चार छोटे भाइयों को लेकर के, और जो है भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में आते हैं, क्योंकि भक्तों की एक खासियत होती है, उनका एक विशेष गुण होता है, जब भी उनके ऊपर कोई संकट आता है भक्त लोग भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सभी पांडवों को लेकर के, अपने छोटे भाइयों को लेकर के, और कृष्ण की शरण में आए, और कृष्ण से कहा, प्रभु हम तो आपके शरणागत वत्सल हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या वास्तव में ही कल पितामह भीष्म की जो प्रतिज्ञा है कल पूरी हो जाएगी? कृष्ण ने मुंह बनाते हुए, मुंह लटकाते हुए कहा, भाई पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, वो तो फेल नहीं हो सकती। बोला, प्रभु आपके होते हुए भी? बोला, हाँ मैं क्या कर सकता हूं। पांडवों ने कहा, प्रभु तो अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ ये तो मैं बता सकता हूं क्या करना चाहिए। ऐसा करो, मन्ना तो है ही है कल, तो ये तो हम भी समझते हैं, ऐसा करो कुछ दान दक्षिणा कर लो, जप कर लो अच्छी तरह से, कीर्तन करो भाई सब मिल करके। तब जो है पांडवों ने कहा, प्रभु जब हमें मन्ना ही है तो कल हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। और पांडव लोग भगवान की सेवा में जुट गए, प्रभु हमें न तो जप करना न कीर्तन करना, हम तो आपके शरणागत हैं, हम तो आपके चरणों को पकड़ करके यहीं बैठे रहते हैं, जो भी होगा कल देखा जाए। और इस प्रकार जो है पांडव लोग भगवान की शरणागति लेकर के उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रह करके, जैसे एक नवजात शिशु अपनी माता के ऊपर आश्रित रहता है, ऐसे जो है पांडव भगवान के श्री चरण कमलों का सहारा लेकर के पूर्ण रूप से उनका विश्वास करके और निश्चित होकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं। कल मरना ही है, ठीक है मरेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ठाकुर के अपने प्रभु के चरणों को देखते हुए, उनके सुंदर मुखारविंद को देखते हुए हम शरीर त्याग करेंगे, इस प्रकार सोच करके और वहां बैठ जाते हैं। इधर जो है पांडवों के शिविर में जो लेडीजों का शिविर था, वहां जब ये सूचना मिली तो द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी तुरंत आकर के सुभद्रा के पास में आई और सुभद्रा से कहा, बहन तुमने तो कुछ सुना है? बोला हाँ सुना तो है मैंने। बोला क्या सुना है? बोला सब मरने वाले हैं कल। फिर तुमने क्या सोचा? बोला मैंने तो कुछ नहीं सोचा बहन, मैं क्या सोचती। बोला चलो हम कृष्ण के पास में चलेंगे, उनसे फरियाद करेंगे। बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, क्यों? कृष्ण को सब कुछ मालूम है, यदि उनको मानना होगा तो ब्रह्मांड में फिर कोई बचाने वाला नहीं, और यदि उनको बचाना है तो फिर उनको कोई मानने वाला नहीं, इसलिए बहन मैं तो उन्हीं के ऊपर आश्रित रह करके यही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा, बहन तू इतनी धैर्यशाली हो सकती है लेकिन मैं इतनी धैर्यशाली नहीं हो सकती, मैं तो अभी जाऊंगी, इसी रात्रि के समय जाऊंगी और जाकर के कृष्ण के चरणों में बार बार रो रो करके फरियाद करूंगी, उनके चरणों में विनती करूंगी कि मेरी प्रतिज्ञा के क्या होगा, मेरे संकल्पों का क्या होगा। और इस प्रकार द्रौपदी जो है सुंदर रस सजवा करके और भगवान के शिविर में आती है, भगवान बैठे हुए हैं, द्रौपदी रो रो करके भगवान के चरणों में जो है विनती करती है, प्रभु ये क्या होने वाला है, मैं क्या सुन रहा हूँ? भगवान ने कहा, द्रौपदी जो भी सुन रही है वो ठीक ही सुन रही है तू। तो इसका उपाय क्या है? तब जो है कन्हैया ने कहा, द्रौपदी उसका उपाय क्या हो सकता है, आप तो जानती है पिता में भीष्म की प्रतिज्ञा है, उसको भला कौन जो है तोड़ सकता है, उनकी प्रतिज्ञा कभी फेल नहीं हो सकती, प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, हो सकता है कि सूर्य पूरा मन होगा करके पश्चिम में उग सकता है, लेकिन पिता में भीष्म की कभी प्रतिज्ञा फेल नहीं हो सकती। तब जो है द्रौपदी ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मैं अभी इसी समय मैं क्या करती हूं, आत्मदाह करती हूं। कृष्ण ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आपका प्लान है, अच्छा होगा ये तो अच्छा है, मैं क्या सहायता कर सकता हूं द्रौपदी? बोला कन्हैया तुम केवल इतना करो, मेरे लिए चिता की तैयारी करो और मैं इसी समय क्या करूंगी, बजाय मैं अपने पतियों के मर करके फिर मैं जो है आत्मदाह करूं, इससे तो अच्छा होगा मैं उनके सामने आत्मदाह कर लेता हूं। कन्हैया ने कहा, ठीक है द्रौपदी ऐसा करो, तुम जब तक क्यों के देखो आत्मदाह करना ही है, तो एक सती स्त्री को क्या करना चाहिए, सज धज करके आत्मदाह करना चाहिए, इसलिए ऐसा करो तुम श्रृंगार करके आओ, मैं जब तक चिता की तैयारी करता हूं। और द्रौपदी जो है श्रृंगार करने के लिए चली जाती है, अपने आभूषणों को सज धज करके आती है, इधर भगवान चिता बना करके तैयार कर देते हैं। द्रौपदी ने कहा, ठीक है मैं अभी चिता पर चढ़ जाती हूं। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी देखो मरना तो है ही है, क्यों ना जो है गुरुजनों का आशीर्वाद ले लो, पतियों का आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी ने कहा झंझला करके, मेरे किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस आप यहीं खड़े रहो और आप लगा दो, मैं तो आपको देखते देखते ही चिता पर चढ़ जाती हूँ। बोला हाँ वो तो मैं कर दूंगा, चिंता नहीं उसकी तो, केवल इतना करो, देखो मेरी बात को मान लो, ऐसा करो गुरुजनों का आशीर्वाद ले लो और देखो मरना ही है तो इसकी परिक्रमा करो, पहले चिता की परिक्रमा करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, परिक्रमा किसकी परिक्रमा? बोला अभी मरना है, चिता की परिक्रमा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं परिक्रमा करती हूँ। तो परिक्रमा के लिए हुई, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं सुनो द्रौपदी, देखो दो प्रकार की परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा होती है एक बड़ी परिक्रमा होती है, अब मरना तो है ही है, क्यों ना बड़ी परिक्रमा कर लो। अच्छा द्रौपदी ने कहा किसकी परिक्रमा करूं, मैं तो कभी जानती नहीं कहां चलना है मेरे को क्या नहीं करना है। बोला उसकी चिंता मत करो, मैं आगे आगे चलूंगा तुम पीछे पीछे चलो, बस बाकी तो परिक्रमा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, द्रौपदी पीछे चली जा रही है। रात्रि का सुनसान अंधकार है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगली जानवरों की आवाजें हो रही हैं, और उस समर में लहू लुहान कई सारे सैनिक, कई सारे घोड़े हाथी पड़े हुए, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी की गर्दन कटी हुई है, और इस प्रकार भगवान जो है उनके ऊपर से और द्रौपदी को परिक्रमा कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं। द्रौपदी जो है पंचाल की वहां जो पत्राण थी उनके पादुका थी, भगवान ने कहा कि देखो परिक्रमा तो करनी है लेकिन चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए, द्रौपदी इसको उतार दो। तो उन्होंने कहा मैं चप्पलों को कहाँ रखूंगी, बोला कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इनको मेरे को दे दो। और प्रभु ने क्या किया, उन चप्पलों को लेकर के अपने अपने दुपट्टा में बांधे, फटुका में बांधे और अपने कांख में दबा करके और द्रौपदी से कहा तुम चली आओ पीछे पीछे और मैं आगे आगे चलता हूँ। और इस प्रकार भगवान जो है आगे आगे चले जा रहे हैं और द्रौपदी पीछे चली जा रही है। अचानक प्रभु रुके, रुक करके द्रौपदी ने समझा हो सकता है यहाँ कोई देवी देवता का स्थान होगा, इसलिए उन्होंने अंधकार में प्रणाम कर लिया। पितामह भीष्म ने कहा यहाँ कोई देवी देवता का स्थान नहीं है, देखो उस सामने लाइट जली हुई है, उस शिविर में दिखाई दे रहा है वो शिविर। द्रौपदी ने कहा देखो वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है दूर, लाइट जली हुई है। बोला हाँ दिखाई तो दे रहा है, वो पितामह भीष्म का शिविर है। किसका शिविर है, ये पितामह भीष्म का शिविर है। और पितामह भीष्म के शिविर में जो साधु हैं, ब्राह्मण हैं और पतिव्रता स्त्रियां हैं उनके जाने पर किसी भी समय कोई पाबंद नहीं। इसलिए द्रौपदी अब मनना तो है ही है, आपके जो है कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध हैं, कम से कम गुरुजनों का वयोवृद्धों का आशीर्वाद तुम ले लो, जाकर के उनको प्रणाम करके आ जाओ और मैं यही पास में ही खड़ा हुआ। द्रौपदी जो है पिता में भीष्म के शिविर की तरफ चलती है। कन्हैया ने चल थोड़ा सा दूर जा करके जब द्रौपदी पहुंची तुरंत कहा द्रौपदी रुको, देखो प्रणाम करते समय क्योंकि इस समय पिता में भीष्म ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और स्पेशली वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जब प्रणाम तुम करोगे तो जाकर के तुम्हारे जो गहने हैं थोड़ी सी उनकी आवाज होना चाहिए जिससे उनको मालूम चले कोई स्त्री यहां आई है। द्रौपदी ने कहा ठीक है कन्हैया, अब जैसा चाहती हूं मैं वैसा ही करूंगी। और द्रौपदी चलती है आगे, प्रभु थोड़ा पीछे पीछे चल करके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी अंदर प्रवेश करती है और उस समय पितामह भी ध्यानस्थ हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। तुरंत जाकर के द्रौपदी प्रणाम करती है और प्रणाम करते समय अपने जो है गहनों की थोड़ी आवाज करती है। उसी समय पितामह भीष्म ने सोचा हो सकता है कल के युद्ध के लिए किसी योद्धा की पत्नी आशीर्वाद लेने के लिए आई है, और तुरंत पितामह भीष्म ने बिना कुछ देखे सोचे और तुरंत आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी ने कहा पितामह दादाजी कल तो आपने मेरे को मेरे पतियों को मारने के लिए 5 बाण निकाल करके रखे और अभी तुम मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती भव, है ये कैसे संभव है, है सौभाग्यवती मैं कैसे रह सकती हूँ जब आप मानने पर तुले हुए हैं तो जो है मैं सौभाग्यवती भव कैसे हो सकती हूँ। तुरंत पिता में भीष्म ने आंखें खोली देखा तो द्रौपदी है, और तुरंत पिता में भीष्म ने कहा द्रौपदी ये प्लान तो तुम्हारा नहीं हो सकता, ये प्लान तुम्हारा नहीं हो सकता, बताओ छलिया है कहां। तुरंत पिता में भीष्म उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के दौड़ करके आंखों से आंसू निकल रहे थे, दौड़ करके गए और देखा कि प्रभु खड़े हुए हैं, जा करके भगवान के दर्शन के उनके चरणों में लोटपोट हो गए और कहा प्रभु जिसको तुम बचाने वाले भला उसको कौन मार सकता, हालांकि मैंने प्रतिज्ञा अवश्य की है लेकिन आपका नियोजन क्या है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु ये 5 बाण लो और इनको लेकर के चले जाओ और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी मैं उसको बिल्कुल खंडित करता। और इस प्रकार जो है पिता में भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी भगवान ने जो है 5 बाण ले लिए और द्रौपदी कहा द्रौपदी अब फटाफट चलो यहाँ ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। इस प्रकार भगवान ने जो है पांडवों की रक्षा की। तो कौन ते है प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रसिद्धि, हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। और इस प्रकार भगवान ने पांचों पांडवों के पिता में भीष्म के द्वारा रक्षा कर दी गई, उनसे बचा लिया गया। तो यही है कि यदि हम भगवान की शरणागति लेते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, हो सकता है कि यहाँ बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन हर एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो स्वतंत्र है, केवल भगवान ही, कि कृष्ण ही सर्व समर्थ सामर्थ्यवान है और वो ही एकमात्र स्वतंत्र है। इसलिए जितना हो सके उनके हमें शरणागति रहना चाहिए, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए अपने योग क्षेम की। तो ये सत्य सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यदि हम वास्तव में हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की, ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, मंग फेस्टिवल के गौर प्रेम नंदे।
तो बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। So it's really very very nice to hear very wonderful story from Shri Radha Shyam Sundar Prabhu. Would like to thank him by saying
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
So the next item, prize distribution ceremony. These prizes are distributed for the services that devotees have rendered for the past year. You must be seeing many devotees serving. When they're doing all these kind of services, they're not getting any benefit, any material benefit out of it. They are doing it out of selfless attitude. This is real selfless service that they are doing. So it's really great that devotees are very much eager to participate in the services and enter such very nice services. So now we would like to thank him. These gifts are very, very small things that we give in return for the sake of appreciation, that's all. These can no way match their services. These can no way match their services. Okay, these are small reward of appreciation. So I would like to request His Grace Radha Shyam Sundar Prabhu to please hand over the prizes as we call upon. The devotees can come.